ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور ہماری قوم کے معزز حضرات اور برادران اسلام آج کی یہ مجلس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آئندہ ایک سلسلہ بابرکت سلسلہ شروع کیا جانے والا ہے اس کی تمہید کے طور پر قائم کی گئی ہے وہ ساری باتیں جو اس تربیتی کیمپ میں ہونے والے دلہوں کو بتلائی جائے گی سکھلائی جائے گی وہ یہاں ابھی بیان نہیں کرنا یہ تو اس لیے منعقد ہوئی ہے کہ لوگوں کو ان ہونے والے ان پروگراموں کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جائے واقعہ یہ ہے کہ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں کو چھوڑ کر ہم جن غلط راستوں پر چل پڑے ہیں اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، کنبا کجا کجا نی ہم، تن ہما داغ داغ شد کنبا کجا کجا نی ہم، پورے جسم میں زخم ہی زخم ہیں، فائے کتنے رکھیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم نے دین کو مکمل بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے. اور ایک شادی تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا، اور باقاعدہ جو دعوت نامے لوگوں کو دیے جاتے ہیں بہت سے، تو اس میں وہی ان نکاح ہو من سنتی باقاعدہ چھپواتے ہیں. وہاں اس لفظ ان نکاح ہو من سنتی کی جتنی توہین ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتی ہوگی. وہ دعوت نامے آج کل لوگ جو ہے کتنے خرچ کرتے ہیں دعوت ناموں کے لیے. جو سادگی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ سادگی تو ختم ہو گئی. اب باقاعدہ جو رسوم کا ہم رسوم کے ہم غلام بن گئے ہیں وہ بہت لمبا چوڑا قصہ ہے، لیکن یہ شروعات جہاں سے ہوتی ہے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. ایک ایک دعوت نامہ ہزار ہزار، دو دو ہزار، تین تین، چار پانچ ہزار کا بنوایا جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیے. اور پھر اب تو جیسے غیروں کو دیکھ کر کے وہ رسمیں، وہ دعوت نامہ خود پہنچانے کے لیے جانا، آج سے چند سال پہلے یہ بات نہیں تھی، اب تو گویا وہ خود دائی جو ہے یا ان کا خاص آدمی ہو، جب تک کہ وہ خود نہ پہنچائیں گے لوگ دعوت میں شرکت نہیں کریں گے. یہ سب باتیں جو ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سادہ طریقہ ہم کو بتلایا اس سے سراسر مختلف ہیں. ویسے تو نکاح کے موقع پر بیانات میں تفصیل بیان کی ہی جاتی ہے، لیکن جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ تو آدھے سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت یہ باتیں کہی جاتی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں میں جو برکت رکھی ہے، ابھی اس بچے نے جو نظم پڑھی مجھے تو بہت پسند آئی، میرے دل پر ایک خاص اثر ہوا. واقعہ یہ ہے کہ حضور کی غلامی کر کے تو دیکھو کیسا سکون حاصل ہوتا ہے، ساری دنیا کی غلامی کر چکے اور اس سے جو بھگت رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، اب ذرا اس کو بھی آزما لیجیے اس سے کیسا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان طریقوں کے اوپر نظر ثانی کریں جو ہم نے نکاح کی نسبت سے اختیار کر رکھے ہیں. ویسے یہ خود موضوع بڑا تفصیلی ہے، اور تربیت کی لائن سے جو باتیں ہونی ہیں وہ تو اپنی اسی کیمپ میں اور اس تربیتی اس میں جوڑ میں سب بتائی جائے گی. مجھے اس وقت میں نے پوچھا مفتی وسیم صاحب سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، بڑا بابرکت سلسلہ ہے اور اللہ اس کو اندر خوب برکت عطا فرمائے اور اس کو مفید اور مؤثر بنائے، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں نکاح کی نسبت سے جو خرابیاں داخل ہو چکی ہیں ان تمام سے نجات کا ذریعہ بنائے. اس کو ایسے سلسلے ہونے چاہیے اور ان چیزوں پر ہمیں عمل کا اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا جو طریقہ بتلایا وہ بے حد سادہ طریقہ ہے. میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بھائی میں ابھی کس موضوع پر بات کروں، تو انہوں نے کہا رسم و رواج کی نسبت سے کچھ کہہ دیجیے آپ, اور حقوق کے معاملے میں یہ جو حقوق اصلی حق ہے وہ کیا ہے. بہت سے پڑھے لکھے بھی یہ نہیں جانتے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا اصلی حق کیا ہے. مسلم شریف کی روایت میں وہ خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر دیا تھا, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مسلم شریف میں موجود ہے, اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف ایک بات بتلا دی, ان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر سے نہ نکلیں, اور آگے فرماتے ہیں تمہارا ان کے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں. گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی حق مرد کا بیوی کے اوپر بتلایا کہ وہ اس کے گھر ہی میں رہے ہمیشہ. کیوں؟ یہ دراصل ایک طبعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا سلسلہ شریعت مطہرہ نے قائم کیا ہے. اور یہ ضرورت کب پیش آ سکتی ہے اس کے متعلق کوئی جو ہے آگاہی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. جیسے یہ سپاہی ہوتے ہیں سرحد کی حفاظت کرنے والے, تو کیا ہے ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے تو ہر وقت ان کو تیار رہنا ہے. ان کو جب چھٹی دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے تو اس میں بھی شرط ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے آپ کی یہ چھٹی کینسل ہو سکتی ہے, اور رات اور دن کی کسی بھی گھڑی میں فوراً آپ بلائے جا سکتے ہیں. یہ بھی یہ جو بیوی کا ہے شریعت نے انسان کی ایک طبعی ضرورت جو ہے خواہش اسی کو یہ لیے نکاح کا سلسلہ رکھا ہے. ہم تو یوں سمجھتے ہیں بیوی ہمارا کھانا پکائے گی, ہمارے کپڑے دھوئے گی, ہمارے گھر میں جھاڑو دے گی, اور ہمارے پاؤں دبائے گی, ہماری یہ خدمت کرے گی, فلاں خدمت واجب ہونے کی حیثیت سے. ایسی کوئی خدمت شریعت نے بیوی کے اوپر لازم کی نہیں. جو اصل حق ہے اس کو تو کوئی دھیان ہی نہیں دیتا. اصل حق اتنا ہی ہے اور اس کا کتنا اہتمام ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی اور وہ جو چرچا ہوا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے معاشرے اور سماج میں کسی کے متعلق کوئی غلط بات پھیلائی جاتی ہے, ساری دنیا اس کا چرچا کرتی ہے لیکن اس کے آس پاس والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن وہی جو موضوع بحث شخصیت ہے تو بیچارہ بے خبر ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی سب چرچے ہو رہے ہیں, حضرت عائشہ کو اس کا بالکل پتہ نہیں. سفر کے بعد آنے کے بعد وہ بیمار بھی ہو گئی تھی, اور اسی بیماری کے دوران ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے وہ گئی, اور عام طور پر اس زمانے میں صحابیات رات کے وقت ہی قضاء حاجت کی, گھروں میں یا گھروں کے پاس بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں تھے, باہر جنگل میں ان کے مخصوص جگہ تھی مناسع, بقی سے اس طرح ایک میدان تھا, وہیں عورتیں قضاء حاجت کے لیے جاتی تھیں. آج بھی جن علاقوں میں عورتیں جن جگہوں پر قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں وہاں مردوں کو آنے جانے پر پابندی ہوتی ہے, وہاں اس کا ایک ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ میرا جانا ہوا تھا راجستھان, کئی سال ہو گئے تو قضاء حاجت کے سلسلے میں وہاں بھی ان کے یہاں بھی یہ بیت الخلاء نہیں تھے باہر جنگل میں, تو ہمارے جو میزبان تھے مولوی صاحب ہمارے شاگرد, انہوں نے بتایا کہ اس طرح عورتوں کے قضاء وہاں کوئی مرد بھولے سے بھی نہیں جا سکتا, اگر جائے گا تو اس کی خیر نہیں, عورتیں خود اس کی خبر لے ڈالیں گی. انہوں نے کہا एक हर जगह का एक दस्तूर होता है। तो बहरहाल हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई, वो हजरत मिस्ताह इब्ने उसासा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने इस तोहमत वाले इसमें मुनाफिकीन की झूठे प्रोपेगंडे की वजह से मुतासिर होकर बेचारे मुलव्वस हो गए थे, उनकी वारी दाव में मिस्ता वो हजरत आयशा के साथ कज़ाए हाजत के लिए गई। रास्ते में फिर उन्होंने एक बहाना उनको चाहिए था, वो अपनी चादर के अंदर उनका पांव फंसा और गिरते गिरते बची, और उन्होंने उस मौके पर कहा था ये सब मिस्ता मिस्ता का बुरा हो भला को, हालांकि मिस्ता तो खुद उनका बेटा ही था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने उनको टोका कि तुम एक ऐसे आदमी को जो बदर में शरीक हुआ है, भले तुम्हारा बेटा है लेकिन उसके मुतालिक ऐसे अल्फाज कहती हो, बस उनको तो बहाना चाहिए था। क्या तुम्हें मालूम नहीं वो क्या कहता है? क्या कहता है वो पूरा किस्सा हजरत अल्लामा मौशा कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये दरअसल उन्होंने एक बहाना तलाश किया था बात पहुंचाने के लिए। वो किस्सा बयान किया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मेरी तो बीमारी लौट आई, घर जब मैं गई तो मैं चाहती थी कि ये बातें जो मुझसे पहुंची वाकईतन ऐसी बातें हो रही हैं कि नहीं, अपनी माँ से उसकी तस्दीक करवाना चाहती थी। जो लोग आज भी हज करने के लिए जाते हैं मस्जिद नबी, जिन्होंने देखी है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला का वो हुजरा जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला रहती थी, उसका एक दरवाजा मस्जिद के अंदर है, उसी दरवाजे से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आ गए। उसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे लिखा हुआ है अंदर के हिस्से में खौफाए अबू बकर, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला का मकान वही था, और एक छोटी खिड़की जिन सहाबा के मकान मस्जिद नबी के साथ लगे हुए थे और उनका असल आने जाने का दरवाजा तो दूसरी तरफ, लेकिन उन्होंने मस्जिद के अंदर छोटे दरवाजे बना रखे थे, खिड़कियां छोटी जिसके जरिए से वो नमाज के लिए मस्जिद और कोई नहीं नमाज के लिए मस्जिद में आते जाते थे, छोटे दरवाजे खौखा उसको कहते थे। तो हजरत अबू बकर का मकान आज भी आप देख सकते हैं मस्जिद नबी की इस तरह हजरत आयशा करती है, बीच में इतना ही फासला। तब भी हजरत आयशा फरमाती है मैं जो बात अर्ज़ा करना चाहता हूं कि मैं चाहती थी कि अपनी माँ से पूछूं कि ये ऐसा ऐसी बातें हुई हो रही है क्या। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो मैंने इजाजत चाही कि अल्लाह के रसूल आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ थोड़ी देर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, फिर वहां जाकर देखो छोटा इतना सा फासला, हमारे जमाने की औरत कैसी दीनदार क्यों ना हो, वो अगर होती तो सोचते भाई दो मिनट का काम है मैं जाकर के आ जाती हूँ, इसमें क्या इजाजत लेने का सवाल। लेकिन नहीं, शरीयत ने जब पाबंद किया कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं बाहर निकालना है, तो इतना एहतमाम उनके यहाँ था। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक ही हक लैस तमलिकून मिनहुन सिवा ज़ाले, हुजूर ने साफ अल्फाज में मुस्लिम की रिवायत में है कि तुम इन औरतों से इसके अलावा और किसी चीज के मालिक नहीं। ऐसा क्यों? मर्दों को कभी भी जरूरत पेश आ सकती है, वह हर वक्त वो वहां होगी। इसीलिए तो शरीयत ने यहां तक कहा कि औरत अगर चूल्हे पर बैठी तंदूर पर बैठी रोटी पका रही है और शौहर को जरूरत पेश आई अपनी इसकी, तो शौहर अगर कहे तो रोटी रहने दे, जल जाए जल जाने दो, उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जाओ, इसीलिए तुमको रखा गया और कोई काम नहीं। मैं तो ये बतलाना चाहता हूं कि ये जो ये सारे हुकूक हमने अपने दिमाग में गढ़ रखे हैं, ये तो कि भाई ये सारे हमारे आजकल तक मिजाज, अभी एक दो तीन महीने पहले की बात है, हमारे एक मिलने वाले ने कहा उनके एक जो है दामाद की बहन का निकाह हुआ था, बम्बई के रहने वाले हैं उनका, इनका हैदराबाद में हुआ, तो कहा कि वो उनकी सास ने काम करने वाली जो थी घर की, जहां शादी होकर ये लड़की गई उसको छुट्टी दे दी। तो बस गया एक मजदूरन लेकर के आए हैं। आज हमारा माशरा औरतों के मुताबिक जो हुकूक शरीयत ने मुताबिक औरतों को सारे हुकूक शरीयत ने दिए हैं हम उनको अदा नहीं करते और उनके साथ ज्यादतियां करते हैं और दुश्मनान इस्लाम को इस्लाम के आकाम पर एतराज करने का मौका देते हैं। दोबारा मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बकौल हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के वो शौहर के हुकूक तो अपनी जगह पर रहे, वो शौहर के माँ बाप भी चाहते हैं कि ये हमारी बहू अपने शौहर की खिदमत करे या ना करे, हमारी खिदमत तो उसको करनी है। ये सारी बातें जो है ये हुकूक से मुताल्लिक बहुत अहमियत रखती हैं, इनकी तरफ तवज्जो की जरूरत है, बतलाना है। आजकल तो न लड़की को मालूम होता है कि शौहर के हुकूक क्या है, न शौहर को मालूम है कि बीवी के हुकूक क्या है। ये सारी चीजें इस सिलसिले में बताई जाए, ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है, बड़ा अच्छा है। तो बहरहाल ये जो गलत फहमी के नतीजे में बात जगह, तो जानते हैं बहुत से घराने ऐसे कि जहाँ अहले इल्म है, खुसर आलिम है, बेटा जिसका निकाह हुआ वो आलिम है, उसके बावजूद ऐसी ऐसी ज्यादतियां होती है कि हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन जुल्मों को सुनकर। या अल्लाह, ये दीन का इल्म इन्होंने पढ़ा है क्या, इसलिए पढ़ा था ये ज्यादती। और वहां वो बात जगह पर तो बेचारा शोहर चाहता भी है कि ये ज्यादतियां ना हो, लेकिन माँ बाप जबरदस्ती ये सब कुछ करवाते हैं इसके पास। तो बहरहाल ये सारे सिलसिले और ये जो समझा जाता है इस सिलसिले में कि भाई हमारे ये हक है, जरा जान लेने की जरूरत है कि आपका हक क्या है। और दूसरी बात यह है कि शरीयत मुतहरा ने तो हुकूक के मामले में इतनी एहतियात रखी कि जिसका हक है उसको नहीं ये कहा कि तेरा ये हक है, जिसके ऊपर हक है उसको शरीयत ने तालीम दी। शोहरों को शरीयत ने तालीम दी कि आपकी बीवी के आप पर ये हो, क्योंकि अदा उनको करना है ना, जिम्मेदारी उनकी है। तो जो जिसका फर्ज मनसबी था वो फराइज उसको बतलाए कि तुम्हारी बीवी का तुम पर यह हक है जो तुमको अदा करना है। और बीवी को नहीं ये कहा कि तुम्हारा तुम्हारे शोहर के ऊपर ये हक है, ये तालीम बीवी को नहीं दी, बल्कि किसको दी, शोहर को। इस्लाम का एक अंदाज है, एक ऐसी ऐसे मसाइल जिनका ताल्लुक दो फरीक से हो, दो पार्टी से हो, तो उस सूरत में जिस पार्टी के ऊपर हक है, जिम्मेदारी, उसी को इस्लाम हुक्म देता है कि तुम्हें ये अदा करना, और जिसका हक है उसको नहीं। बीवी का जो हक है वो शोहर को बताया गया, और शोहर के हुकूक बीवी को बताए गए कि तुम्हारे शोहर के तुम पर ये हुकूक हैं तुमको अदा करने। जैसे बेटे का क्या हक है, औलाद का क्या हक है, शरीयत ने माँ बाप को बताया, और माँ बाप का क्या हक है वो औलाद को, तुम्हें माँ बाप की ये हुकूक अदा करने। माँ बाप के वो नहीं कहा कि तुम्हारा तुम्हारी औलाद पर ये हक है। हर जगह यही अंदाज इख्तियार किया है शरीयत ने। अब आजकल क्या हो गया, हरेक ने अपना सबक छोड़कर दूसरे का सबक पढ़ना चालू कर दिया। शोहरों को जो सबक दिया था शरीयत ने कि तुम्हारी बीवी के तुम पर ये हुकूक हैं, सुना कि नहीं, तो वो शोहर तो मालूम नहीं, बीवी ने ये सब पढ़ लिया कि मेरे शोहर के ऊपर ये हुकूक हैं, और वो डिमांड करती है कि मेरे ये हुकूक अदा कीजिए, और शोहर के बीवी के ऊपर जो हुकूक हैं वो शरीयत ने बीवी को बतलाए थे। अब वो सबक शोहर ने तो पढ़ा नहीं, बीवी ने तो पढ़ा नहीं, शोहर पढ़ रहा है कि मेरे बीवी पर ये हुकूक हैं तुम अदा करो। हालांकि इस्लाम की तालीम जो मैंने अर्ज किया, अगर वो सिलसिला होता तो शोहर के जो फराइज हैं वो बीवी के हुकूक हैं, और बीवी के जो फराइज हैं वो शोहर के हुकूक हैं। जो हर आदमी अपना फर्ज अदा करेगा तो उस सामने वाले का हक खुद ब खुद अदा हो जाएगा। कोई डिमांड की उसके लिए कोई احتجاج کرنے کی اور اس کے لیے کوئی مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں خدا نہ کرے ہوتا ہی ہو تو اس کا وہ اللہ کے یہاں گنہگار ہے, اللہ اس سے نمٹیں گے. لیکن مان لیجئے کہ اگر شوہر بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو شوہر اللہ کے یہاں ماخوذ ہوگا, اس کو سزا ہوگی جو ہے, لیکن اس کی وجہ سے بیوی کے اوپر شوہر کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں وہ کوتاہی نہیں کر سکتی. یا بیوی شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے شوہر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے. کیوں؟ یہ ذمہ داری تو اللہ میاں نے ڈالی. اللہ میاں نے شوہر کے اوپر لازم کیا کہ تم اپنی بیوی کے یہ حقوق ادا کرو. اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو اللہ کا گنہگار ہے, اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیں گے, آخرت میں تو ہے ہی بھگتیں گے. یہی حال دونوں طرف. دوبارہ اسلام تو نام ہی ہے حقوق کا, ایک دوسرے کے حقوق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں. بھائی میں کون ہوں؟ میں بیوی کا شوہر ہوں, میں اس حیثیت سے میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں مجھے معلوم ہونی چاہیے. میں کون ہوں؟ میں ایک باپ کا بیٹا ہوں, ایک ماں کا بیٹا ہوں, اس حیثیت سے باپ اور ماں کے جو حقوق ہیں وہ مجھے معلوم ہونے چاہیے. میں کون ہوں؟ میں ایک بھائی ہوں, تو اس حیثیت سے ہمارے بھائی کے حقوق میرے اوپر جو ہے وہ مجھے ادا کرنے. ہر اپنی اپنی حیثیت کو دیکھ کر اس حیثیت سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو آپ معلوم کرو اور اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرو. یہ ہمارے سماج نے جو رواج طے کر دی اور اس رواج کے مطابق ہو رہا ہے. یہ رواج سمجھیے ایک مستقل شریعت کی حیثیت لوگوں کے دلوں میں اختیار کر چکا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے, کسی کے دل میں ایمان پیوست ہو چکا ہے, یہ اگر آپ جاننا چاہیں تو دیکھ لو رواج کے سلسلے میں اس کا رویہ کیا ہے. بڑے سے بڑا مولوی ہو, بڑے سے بڑا دیندار کا لیبل لگائے ہوئے ہو, لیکن اگر وہ رواج کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں ہتھیار ڈال دیتا ہے, سمجھ جاؤ دل کے اندر ایمان پیوستہ نہیں ہوا. یہ رواجات جتنے ہیں نا یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہے, وہی دیکھنا ہے. آج تو بڑے سے بڑا دیندار ہم کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب آپ تو عالم دین ہیں, آپ کے گھر میں شادی ہوئی اور اس طرح رواجات ہوئے, کیا کریں مولوی صاحب؟ وہ سامنے والے کو کیا کریں, عورتیں مانتی نہیں. ایک مرتبہ وہاں بمبئی میں وہاں وہ جو کھار کی جامع مسجد ہے نکاح کی نسبت سے میرا ایک بیان ہوا تھا, وہاں ایک بات کہی, وہاں بہت سے ہمارے پہچان والے جو ہیں بڑے جو تاجی بڑے یہ ہیں کانٹریکٹر وغیرہ, میں ان کو کہا کہ دیکھو لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ عورتیں نہیں مانتی, اگر یہی عورتیں ان کی تجارت کی کسی بات میں دخل اندازی کریں دو تماشے ماریں گے, تو بیٹھ کہاں دخل دیتی ہے, وہاں ایک ذرہ برابر بھی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیان کے بعد وہ ایک جو بڑے آدمی مجھے کہنے کہ آپ نے مولوی صاحب بڑی پکڑ کی آج تک, واقعہ یہی ہے. یہ دین کے معاملے میں ہم بہانے نکالتے ہیں, یوں کہتے ہیں عورتیں نہیں مانتی. ارے بھائی وہ تو تم خود بھی یہی کرنا, تمہارے دل میں بھی چور ہے لیکن اپنی اس چوری کو چھپانے کے لیے عورتوں پر الزام دھرتے ہو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. میں نے حدیث پڑھی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اب غز الناس الى الناس اب غز الناس الى اللہ ثلاثہ, اللہ کی نگاہوں میں لوگوں کے اندر سب سے زیادہ مقبوض ناپسندیدہ جس پر اللہ کا غضب ہو ایسے آدمی تین ہیں, ملحد فی الحرم, ایک تو وہ جو حرم کے اندر بے دینی کا ارتکاب کرے, حرم کو اللہ نے بڑا قابل احترام بنایا ہے, اس کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا برابر بھی حرم کے دائرے میں कोई बेदीनी का काम होना नहीं चाहिए। जो ऐसा इलाहाद करता है तो उसके ऊपर अल्लाह का बड़ा गज़ब। दूसरा, मुक्तदीन फिर इस्लाम सुन्नत जाहिलियत, इसी को मैं बतलाना चाहता था। मुसलमान होते हुए जाहिलियत के तरीकों को अपनाने वाला, इख्तियार करने वाला, हम मुसलमान हैं और ये रिवाजात जितने भी हैं गैर इस्लामी, उनको जब अपनाएंगे तो अल्लाह का गजब हम पर नाजिल होगा। ये अब इसके बाद फिर हम इन समझें कि हमारे निकाह में खैर व बरकत हो, कहां से बरकत होगी? बरकत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके में है। उससे जरा बराबर, एक बाल के बराबर भी हम हटेंगे तो बरकत से महरूम हो जाएंगे। खुद हुजूर फरमाते हैं कि आजम निकाह बरकतन अयसरहु मूनतन, सबसे बड़ा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, सबसे कम खर्च हो, कोई खर्चा ही न किया जाए। आज तो जहेज का सिलसिला उधर लड़कियों पर लाजिम किया गया है, इधर दूल्हे वाले की तरफ से मालूम नहीं क्या क्या किया जाता है। ये सब जो पैसे बेदरे खर्च किए जाते हैं निकाह के नाम से, तो ये क्या उस पर अल्लाह की रहमत उतरेगी? नहीं, ये उसमें कोई बरकत नहीं। जाहिर है बरकत तो अल्लाह की तरफ से आती है, तो बरकत किन चीजों से आएगी ये तय करने का हक हमारा नहीं है। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बतलाए हुई, हम क्या समझते हैं कि बड़े दो चार मौलवियों को दावत दे दो निकाह की मजलिस में तो बरकत हो जाएगी? बरकत नहीं। 100 मुफ्ती भी आ जाए तुम्हारे निकाह में, और अगर तुमने जो है रिवाज के ऊपर अमल किया तो ये 100 मुफ्ती उस रिवाज पर अमल की वजह से जो नहुसत आने वाली है उसको रोक नहीं सकते। याद रखना, आज हमने बरकत अपने जहन से तय कर ली है, ये सही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सादा तरीकों को इख्तियार किया जाए, उसमें हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सादा कैसा सादा, आपको हैरत होगी कि देखो जब ग़ज़वे खैबर से वापसी में रास्ते में एक जगह पर लश्कर पड़ाव डाले हुए था, और उसी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुआ। जो लोग वहां मौजूद थे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, बस उनको पता चला कि आपका निकाह हुआ। लश्कर तो पूरे मैदान में पड़ाव डाले हुए था, उन जो हालांकि वहां पर आबादी नहीं है, उन लश्कर वालों को अगर जमा करना चाहते तो बहुत आसानी से जमा हो सकते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी भी जरूरत महसूस नहीं की। और उसकी दलील क्या कि नहीं बुलाया? उसी बुखारी की रिवायत में है कि और फिर वलीमा हुआ। वलीमा भी कैसा सादा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा तुम्हारे तोशादानों में जो कुछ है लाओ। कोई सत्तू लाया, किसी के पास खजूर था, कहीं किसी के पास घी था, वो लाया गया, उसका मालिदा तैयार किया गया। और फिर हजरत दावत दी कैसी, हजरत अनस जो हुजूर के खादिम थे उन्होंने कहा भैया बुला लो, हुजूर ने नाम नहीं लिया, बुला बुला तो बुला बुला लो, उनको जो मुनासिब मालूम हुआ करीब में उनको बुला लिया और वो शरीक हो गए। बाद में जब रवानगी का वक्त था, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां रात गुजारी थी हजरत सफिया के साथ, इसलिए लोग ये तो जानते थे कि यार ये रात गुजारी है। लेकिन उस जमाने में जिस तरह बीवी के साथ शब्बाशी होती थी, बांदी के साथ भी होती थी, और हजरत सफिया यहाँ कैद पकड़ी गई थी ग़ज़वे खैबर के मौके पर, तो आपने उनको आजाद करके निकाह किया, तो वहां ये भी एहतमाल था कि वो बांदी की हैसियत से आपने इस्तेमाल किया हो। तो आपने जब शब्बाशी की तो लोग सहाबा जो मालूम नहीं था जिनको कि निकाह हुआ है, तो आपस में चर्चा हुआ कि हुजूर का इनसे निकाह हुआ है ये बांदी, तो कोई कहने लगा निकाह हुआ, कोई कहने लगा बतौर बांदी के इस्तेमाल किया। तो आखिर फैसला ये ठहरा कि चलो देखो रवानगी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए पर्दा चादर का करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो ये दलील है इस बात की कि ये आपकी बीवियों में से है। चनाचे वो हुआ तो तब फैसला हुआ। आप अंदाजा लगाओ कि वहां मौजूद हैं फिर भी उनको वहां करीब में बुलाए जाने की जरूरत महसूस नहीं की। इससे बढ़कर सादगी और क्या हो सकती। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सारा तरीका बतलाया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़े जलील कद्र सहाबी हैं और उनका निकाह हुआ, हुजूर को कोई इत्तला नहीं की पेश की, न निकाह में दावत दी। बाद में दूसरे दिन आए इत्तेफाक से उनके कपड़े पर पीले रंग का एक दाग था। उस जमाने में औरतें एक मखसूस खुशबू इस्तेमाल करती थी जिसमें जाफरान वगैरह पड़ा हुआ होता था। वो पीला दाग देख कर हुजूर ने पूछा कि अब्दुर्रहमान ये क्या है, तो जवाब में अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मेरा निकाह हुआ। तो हुजूर ने क्या पूछा, आजकल तो अगर पहला सवाल ये करें, वाह भाई आपने निकाह किया और हमको बुलाया भी नहीं, आपने ये पूछा कि आपने किससे निकाह किया कि एक अंसारी लड़की से, मेहर में क्या दिया, एक गुटली पर सोना दिया, अब वलीमा कर लो चाहे एक बकरी का ही सही, और उसने ये नहीं कहा कि हमें भी बुलाइए वलीमे में, ये नहीं फरमाया। आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर के साथ सहाबा को जो मोहब्बत थी और उसके बावजूद उन्होंने उनको बुलाना जरूरी नहीं समझा, और ऐसा भी नहीं कि पैसे नहीं होंगे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ तो उन सहाबा में से है जो मालदार सहाबा, इंतकाल के वक्त उनकी मीरास जब बांटी गई तो सोना कुल्हाड़ों से तोड़ा गया, इतना माल छोड़ा था, लेकिन जो है निकाह में खर्च करना बिल्कुल नहीं, हुजूर तक को दावत नहीं दी गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता था कि हमें यही वो चीजें हैं जिनको बताने की जरूरत है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि बड़े जिम्मेदार अपने घरों के खानदानों के आए हैं कि जब ये कैंप लगेंगे और इन कैंपों के लगने की सूरत में इन नौजवानों को जो है ये शरीयत की ये सारी चीजें बतलाई जाएगी और उनके दिल में उतरेगी कि नौजवानों का मिजाज अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो सच्ची और हक बात को बहुत जल्दी कबूल कर देते हैं। वो कुरान मोहम्मद लोग जो होते हैं ना, वो बड़े ढेट होते हैं, वो जल्दी से मान के नहीं दिया करते, लेकिन नौजवान जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला बड़ा तबका सहाबा का, वो सब नौजवान थे। तो बहरहाल नौजवानों से यही उम्मीद की जाती है वो मानेंगे, लेकिन वो जब तय कर लेंगे और उसके बाद घर जा करके अपने इस इरादे का इजहार करेंगे, सबसे पहली रुकावट कौन, माँ बाप की। माँ बाप क्या थे, नहीं नहीं हम कहेंगे ऐसा होगा निकाह। बेटा कहता है अब्बा जान अल्लाह के रसूल सलासम ने जो बतलाया है मैं तो वैसा निकाह करना चाहता हूँ। अब्बा कहें तुझे बोलने की जरूरत नहीं, हम जो करें करने दो। यहाँ तक कि जिन औलाद को माँ बाप ने पढ़ाया आलिम बनाया, बेचारे वो मेरे हमारे सामने आके रोते हैं कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, कोई रस्म रिवाज नहीं, कोई ये नहीं, लेकिन माँ बाप कहते हैं अगर ऐसा करना है तो हमारे घर में से निकल जा। मैं ऐसे माँ बाप से कहा करता हूँ कि अगर अपने बच्चों को यही अपनी जहालत पर तुम चलाना चाहते थे तो पढ़ाया का ही तो उसको भी जाहिली रखते ना, तो बात आसान थी। अब एक तरफ तो उसको पढ़ाया, इल्मे दीन से वाकिफ किया, वो उस पर अमल करना चाहता है और आप अपनी जहालत वाले तरीके पर उसको चलाना चाहते हैं जबरदस्ती। आज माँ बाप का मसला यही हो गया, कहीं किसी जगह माँ बाप निकाह कराना चाहते, माँ बाप चूंकि शरीयत की बहुत सी चीजों से वाकिफ नहीं होते, इसी का नतीजा ये है। कहीं माँ बाप चाहते हैं कुछ कमजोरी है, वो बच्चा जानता है उसने इनकार किया, तो माँ बाप कहे नहीं हम कहेंगे वही निकाह कर, चलो भाई बच्चे ने मान लिया, उसको नहीं थे उसको नहीं करना था, माँ बाप की बात मानकर निकाह कर लिया। अब वो बहू घर में आई, किसी एक दो चीजों में माँ बाप से जरा बात क्या हो गई, आड़ी हो गई, अब माँ बाप कहेंगे तलाक दे दो। अब ये तलाक देना भी नहीं चाहता बेचारा, कब भले मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ माँ बाप की बात मान करके निकाह किया, लेकिन अब जब निकाह हुआ है तो मुझे उसको निभाना है, लेकिन माँ बाप कहने इसको तलाक दे दो वरना मेरे घर में रही हो। तो भाई निकाह करने के लिए भी घर में मत रही हो और तलाक देने के बाद भी शराब, ये क्या तरीके हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में ये जहालत क्या कुछ नहीं करवा रही है। जरूरत है शरीयत की चीजों को समझें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को इख्तियार करें और शरीयत का तरीका सामने आने के बाद जो है हमें चू और चा करने की जरूरत नहीं, उसको मान लो, फिर अल्लाह जो उसमें बरकत देंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसी बरकत अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। बहरहाल ये जो सिलसिला मुफ्ती वसीम साहब जो बच्चों की तरबियत का कैंप शुरू कर रहे हैं, मैं इनको इनके रफ़क़ाए कार को और इस काम में जितने भी तआवुन करने वाले अहबाब हैं उन तमाम की खिदमत में जो है मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है नोट्स की थी जो है कि भाई एक तो इन बच्चों को जो मसाइल है इस सिलसिले में उनसे आगाह करना है, हुकूक से आगाह करना है, तहारत के मसाइल से आगाह करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। निकाह करते हैं उनको पता ही नहीं कि किस तरह गुसल करना चाहिए, गुसल कब वाजिब होता है ये मालूम नहीं, इंशाल्लाह इनको बताया गया है। हमारे एक मुशफिक जो है इनायत शर्मा ने इसकी तरफ मुतवज्जे फरमाया था, हमने वो जो है मुफ्ती साहब को खत भी पढ़वा दिया, कहा नहीं ये सब चीज़ें जहन में है इसके मुताबिक करेंगे। एक और जो है निकाह में सादगी, हुजूर वाला तरीका और रिवाज से दूरी, ये सब समझाएंगे। बीवी के हुकूक क्या हैं, माँ बाप के हुकूक क्या हैं, बहुत सी मरतबा ये होता है कि माँ बाप की रियायत में बीवी के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, जुल्म होता है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती किसी हाल में भी, हर एक के हुकूक अपनी जगह पर हैं। और कभी बीवी की मोहब्बत इतनी गालिब आती है कि माँ बाप के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, कभी इधर कभी उधर, शरीयत तो एतदाल दोनों के हुकूक को अदा करो। बाज आकर के कहते मौल साहब मैं तो बीच में सूढ़ी बच्चे सोपारी जैसा हूँ, उनका ऐसा ही रहना है और हुकूक अदा करने हैं माँ बाप के भी और बीवी के भी। बीवी की वजह से माँ बाप के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और माँ बाप की वजह से बीवी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक लतीफा हमारे हजरत सुनाते थे, उसको सुनाकर बात खत्म करता हूँ। एक मरतबा बीवी और बहू और सास में लड़ाई हुई, बहू और सास में लड़ाई हुई तो सास ने बहू से कहा आने देने मेरे बेटे को, सब कह तेरी खबर लेती है, ये लेवाऊंगा, पिटाई करवाती हूँ तेरी। तो बहू कह रहे आने दो नहीं उसको, मैं भी उसको कहूंगी नहीं। तो वही माँ कहती है वो तेरी थोड़ी सुनेगा, मैं माँ हूँ मेरी सुनेगा। तो वो कहती है अरे नहीं तेरी सुने मेरी सुनेगा, कि तेरी क्यों सुनेगा, तू तो खड़े खड़े कहेगी, मैं पड़े पड़े कहूंगी। तो वो तो पड़े पड़े कहती है ना, रात को सोए सोए कान में जो फूके मारती रहती है उसकी वजह से भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल जरूरत है दोनों के हुकूक की रियायत की। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने तो मुस्तकिल एक रिसाला तादील हुकूक वालिदैन के नाम से लिखा है, जो बेरिश्ते ज़ेवर के अंदर मौजूद है अलग से। तो बहरहाल हमारे बुजुर्गों ने इन सारी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे कराया है, ये हुकूक अदा होने चाहिए। बीवी कोई आपकी नौकरानी नहीं है, खादिम बन के नहीं आई है। मैं एक किस्सा उस पर भी सुना देता हूँ। हजरत डॉक्टर अब्दुल हय साहब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत हकीम उम्मत नंबर अल्लाह कदर के बड़े खुलफा में से और पड़ोस के मुल्कों में सबसे आखिर में उन्हीं की वफात हुई है, उनका किस्सा है कि उन्होंने एक मरतबा फरमाया कि हमारी इस दिवाजी जिंदगी को, निकाह वाली जिंदगी को आज 53 साल हो रहे हैं, लेकिन मैंने कभी बीवी से ये भी नहीं कहा कि मेरे लिए पानी लाओ, कोई ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि कहते हैं कि मैं समझता हूं कि मैं तो सबकी खिदमत के लिए पैदा किया गया हूं, ये हाल उनका था। और हमारे यहां बीवियां बिचारी काम कर करके जो है वो नौकरानी से भी ज्यादा बदतर हाल होता है, तो अभी उसका कोई एहसान नहीं, तो भी ज्यादती है। उसका उन्हीं का एक दूसरा किस्सा सुनाता हूं। एक हजरत के एक मुरीद थे, उन्होंने उनकी दावत की, उनकी बीवी भी मुरीदा थी। दावत खाने के बाद उनकी आदत थी कि अहलिया घरवाले और मस्तूरात का भी शुक्रिया अदा करते थे। पर्दा करा करके कहा, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, आपने बड़ा अच्छा खाना खिलाया, बड़ा लजीज खाना था। अब ये वो कह रहे हैं और पीछे से, पर्दे के पीछे से सिसकियों की आवाज आ रही है रोने की। ये घबरा गए, क्या बात है, मैंने कौन सी ऐसी बात कही जिसकी वजह से ये रो रही है। पूछा, तो नाराजगी तो मुझसे नहीं हुई? कि नहीं हजरत, आपसे क्या नाराजगी, आप जब ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो मुझे अपने शोहर का रवैया याद आ गया, ये आपके बाजू में खड़े हैं, 40 साल से खाना पकाकर इनको खिला रही हूँ, एक दिन भी भूखी जबान से ये नहीं कहा कि तूने अच्छा खाना बनाया है, आपकी तो आज पहली मरतबा हमने दावत की और खाना खिलाया और आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वाकया ये है कि सारी जिंदगी खिदमत करके मर जाती है और उसका उसका एहसान नहीं समझ, उसने क्या किया, तो करना ही चाहिए। अरे तुमको मालूम ही नहीं कि हक क्या है, अगर हक होता, मालूम होता तो समझते कि उसका एहसान ही एहसान है। तो बहरहाल ये ज्यादतियाँ जो हमारे समाज में होती है, तरफेन से होती हैं, उन तमाम का सद्देबाप करने की ज़रूरत है। और मैं तो मुफ्ती वसीम साहब से कहूँगा कि जिस तरह ये आपने तरबियती के हम दुल्हों के जगह रखा, दुल्हों के माँ बाप के लिए भी तरबियती के हम रखो, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा कितना हक है और हमें किस तरह पेश आना चाहिए। इसलिए कि घर में सारा ये ऑर्डर तो उनका चलता है, वो बेचारा ये बच्चा जो है बेटा तो उनके सामने बेबस है, इसलिए उनको भी इन चीज़ों से वाकिफ करने की ज़रूरत है। बहरहाल वक्त तो कम है, ये मसाइल तो ऐसे हैं कि किसी को इंतहा नहीं। मुझे भी अभी एक जगह सफ़र में जाना है, मैं अभी निकल जाऊँगा, खाली मुझे रास्ता दे दें, एक भी खड़ा होकर मुसाफिर की कोशिश न करें, मजलिस जैसी है वैसी बरकरार रहे। और हमारे हजरत मुफ्ती रहमान साहब सल्लमहु, चूँकि हमारे यहाँ जो महकमे शरिया है उसके काजी हैं, और कैसे कैसे उनके पास मसाइल आते हैं, केस आते हैं, मुकदमे आते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें उनके इल्म में हैं, उन्हें उसी मुनासबत से और उसको सामने रखते हुए इंशाल्लाह ये तलाक वगैरह के सिलसिले में कुछ बातें ये इरशाद फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुतहरा की मुकम्मल पाबंदी की तौफीक अता फरमाए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।